अयांश ने अपनी गाड़ी के ब्रेक अचानक लगाए। उसकी भौहें हैरानी से सिकुड़ गईं। उसने पीछे देखा, गाड़ी थोड़ी पीछे खींची और अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर अपनी दाईं ओर देखा। आरवी दिखाई दी और उसके पीछे संयम भी। इतनी दूरी नहीं थी कि अयांश उन्हें ठीक से ना देख पाता या आरवी को पहचान ना पाता। हालांकि संयम का चेहरा आरवी के चेहरे के दूसरी ओर होने के कारण अयांश को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अयांश के चेहरे पर हैरानी की जगह गुस्सा छा गया। आरवी वहां उस गांडन में किसी और शख्स के साथ थी। वो शख्स उसके पीछे ही नहीं बल्कि उसके बहुत करीब भी था। आरवी की आंखों पर उस शख्स का हाथ और आरवी का हाथ उस शख्स की कलाई पर था। ये देखकर अयांश ने गाड़ी का स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। वो गुस्से से तिलमिला उठा, जबड़ा कस गया। वो आरवी की ओर देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, इसका आसपास होना मेरा वहम नहीं था, ये यहाँ है, मतलब उस रेस्टोरेंट में भी थी। इतना कहते ही अयांश के दिमाग में आरवी की बातें घूमने लगीं। जब अयांश ने उससे पूछा था, कौन सा फ्रेंड, तो आरवी ने जवाब दिया था, कौन सा नहीं, कौन सी कहना चाहिए था आपको। ये सोचकर अयांश ने एक पल अपनी आंखें मूंद लीं। गुस्से से उसके चेहरे और हाथों की नसें उभर आई थीं। दूसरे ही पल अयांश ने आंखें खोली और आरवी की ओर अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखा। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? यहाँ तो कौन सा है तुम्हारे साथ, ना कि कौन सी जिसके साथ तुम मुस्कुरा रही हो। इतना कहते ही अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। आरवी ने संयम से कहा, संयम जी, जिया छुप गई तो आप भी जाकर छुपिए अब। हाँ, जा रहा हूँ, कहकर संयम ने आरवी से अपने हाथ हटाए और जिया के छिपने की ओर भाग गया। जिया ने संयम को अपनी जगह देखकर कहा, संयम चाचू, आप कहाँ छुपोगे? संयम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, यहीं छुपूंगा और तुमको भी छिपाऊंगा। तुमको छुपना नहीं आता स्वीटहार्ट, कितना टाइम लेती हो बच्चा, डेविल वाली डॉक्टर हमें यहाँ फट से ढूंढ लेगी, हमें पकड़ में नहीं आना है इजीली। चलो हम अच्छी जगह छुपते हैं, कहकर संयम ने जिया को गोद में उठाया और पेड़ से निकलकर दूसरी ओर चला गया। आरवी जोर से बोली, हम आ रहे हैं। इतना कहकर आरवी ने अपनी आंखें खोली, फिर पलके झपकते हुए बोली, अच्छा है संयम जी ने ज्यादा दबाव से अपने हाथ मेरी आंखों पर नहीं रखे, वरना कुछ देर तो मैं अंधी ही बनी रहती। चल आरवी, चाचू भतीजी को ढूंढते हैं अब। इधर उधर देखते हुए, कहाँ छुपे होंगे? जहाँ भी छुपे हों आरवी चतुर्वेदी ढूंढ ही लेगी, कहती हुई आरवी पेड़ की ओर बढ़ गई। अयांश अपने ऑफिस की टेरेस पर रेलिंग पकड़े खड़ा था। चेहरा उसने आसमान की ओर किया हुआ था। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, पर गुस्से से उसके शरीर की नसें अभी भी तनी हुई नजर आ रही थीं। कानों में आरवी के बोल गूंज रहे थे, कौन सा नहीं कौन सी, और आंखों के सामने चलचित्र की भांति वो गार्डन में देखा हुआ दृश्य चल रहा था। आरवी के करीब वो दूसरा शख्स, आरवी की आंखों पर उसके हाथ, आरवी का हाथ उसकी कलाई पर और उस वक्त की आरवी की मुस्कान। ये ख्याल आते ही अयांश की भौहें सिकुड़ जाती और रेलिंग पर उसके हाथों की पकड़ और कस जाती। मई का महीना, अप्रैल से ज्यादा, जून से कम, पर गर्मी वाला तो होता ही है। पर आज धूप की जगह बादल थे, जिन्होंने सूरज को अपने भीतर इस कदर छुपा लिया था कि उसके तप से आज धरती अछूती रह गई। ऐसा लग रहा था मानो अभी बारिश होगी। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी जो मौसम को अच्छा और थोड़ा ठंडा बना रही थी। और मुंबई तो वैसे भी बारिश के लिए फेमस है, बिन मौसम बरसात हो जाती है, जब मन करता है बरखा रानी टपक पड़ती है। अयांश आधे घंटे से टेरेस की उसी जगह पर खड़ा था। अभी अगर बारिश आ भी जाए तो भी उसकी बूंदें उसके अंदर जल रही गुस्से की आग को नहीं बुझा सकती थीं। बाहर का मौसम भले ही अच्छा हो, पर अयांश के अंदर तो तूफान मचा हुआ था, जो कब शांत होगा शायद अयांश भी इस बात से बेखबर था। तभी विनीत वहां आ गया, उसके हाथ में एक ब्लैक फाइल थी। वो उसे हाथ में हिलाते हुए अयांश के पीछे आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अयांश तुम यहाँ हो? ऑफिस से कब जाते हो, कब आते हो, पता भी नहीं चलता तुम्हारा तो। बाहर गाड़ी देखी तुम्हारी, तब पता चला तुम आ गए हो। कैबिन में आकर देखा तो तुम वहां भी नहीं थे, फिर सोचा तुम जरूर इसी जगह मिलोगे। मौसम अच्छा है ना आज, तो एंजॉय कर रहा होगा, और देखो मिल गए तुम मुझे यहाँ। मुस्कुराते हुए, मौसम आज का कितना अच्छा है ना अयांश, इधर उधर देख आसमान की ओर देखते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश होने वाली है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। चलो गर्मी से राहत मिली, ऐसे मौसम में ही टेरेस पर आकर खड़े हो सकते हैं, वरना धूप में तो चलते ना बने, गर्मी में तो एसी ही नजर आती है, खुला आसमान नहीं। हंसते हुए बोलते बोलते विनीत का ध्यान अपने हाथ में मौजूद फाइल पर गया। वो अयांश के बगल में खड़ा होकर फाइल खोलते हुए बोला, कैबिन में रख दी थी, सोचा आकर कर दोगे साइन इन पेपर्स पर, अभी तक साइन ही नहीं हुए, लगता है तुम कैबिन में गए ही नहीं, मैं अपने साथ ही ले आया फाइल। चलो अच्छे मौसम का आनंद उठाते हुए ये अच्छा काम भी कर लो, कर दो साइन जल्दी से, जो ये काम आज ही पूरा हो जाए। कहते हुए विनीत ने अयांश के सामने मुस्कुराते हुए फाइल रख दी, पर अयांश ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा, अभी भी उसकी आंखें बंद थीं और हाथ रेलिंग पर कसे हुए थे। तभी विनीत के चेहरे पर मुस्कान की जगह हैरानी भरे भाव आ गए। वो अयांश के चेहरे की ओर थोड़ा झुककर देखते हुए बोला, क्या हुआ अयांश? अयांश ने बंद आंखों से ही सर्द आवाज में कहा, जाओ यहां से। विनीत को अयांश की आवाज में दर्द दिखाई दिया। वो अयांश के लिए परेशान हो उठा। उसने फट से अयांश के कंधे पर अपना हाथ रखा। विनीत बोला ही था कि तभी अयांश ने अपनी आंखें खोली और विनीत को खुद से दूर धकेल दिया और उस पर गुस्से से चिल्लाया, कहाँ ना जाओ, क्यों आए हो यहाँ? विनीत गिरते गिरते बचा। उसने संभलने के लिए रेलिंग पकड़ ली थी। विनीत अयांश को गुस्से में देखकर बोला, अयांश तुम गुस्सा क्यों हो इतना, मैं तो बस पेपर साइन। विनीत आगे कुछ कहता कि अयांश ने विनीत के हाथ से फाइल छीन ली और उसी वक्त उसे हवा में उछाल दिया। फाइल के सारे पेपर्स हवा में उड़ते हुए बिल्डिंग से नीचे जा रहे थे। विनीत चौंकते हुए बोला, अयांश? तभी अयांश फिर उसे घूरते हुए चिल्ला उठा, जाओ अब यहाँ से, आई से गेट आउट, लीव मी अलोन, गो। इतना कहकर अयांश वापस पहले जैसे ही खड़ा हो गया, आंखें मीच कर और रेलिंग को हाथ को से पकड़कर। अयांश को ऐसे देखकर विनीत अपने कदम पीछे लेने लगा और मन ही मन खुद से बोला, आज तुम गुस्से में नहीं दर्द में भी हो अयांश, वजह पता नहीं, ना ही तुम बताओगे क्या हुआ होगा। परेशान होते हुए, कॉल पर बात हुई थी तब तक तो अयांश ठीक लग रहा था, फिर तभी अयांश फिर सर्द भरी आवाज में बोल पड़ा, जाओ विनीत यहाँ से, फिर ना कहना पड़े मुझे। अयांश आगे कुछ कह पाता कि विनीत बोल पड़ा, जा रहा हूँ, रुकना चाहूँ तो भी नहीं रुक सकता, जानता हूँ अच्छे से तो मुझे हर हाल में अपने साथ रख सकते हो, पर जब बात तुम्हारे दर्द की आती है तो उसमें सिवाय खुद के तुमको किसी का साथ नहीं भाता। इतना कहकर विनीत वहाँ से चला गया।
उसके जाते ही अयांश ने अपनी आंखें खोली। गुस्से के साथ आंखों में हल्की नमी थी। मेरे दर्द पर सिर्फ मेरा हक है, जो मेरा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और जिस पर मेरा हक है वहाँ किसी और की मौजूदगी भी मुझे बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त। फिर गार्डन वाले सीन को याद करते हुए, इतना कहकर अयांश ने अपनी कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। एक सिगरेट निकालकर पैकेट को अयांश ने वहीं फेंक दिया और लाइटर से उस सिगरेट को जलाकर लाइटर को भी फेंक दिया और सिगरेट के कस भरने लगा। अयांश ने कुछ कस लिए ही थे कि बारिश आने लगी, पर अयांश वहां से नहीं हिला। बारिश के पानी ने उसकी सिगरेट तो बुझा दी, पर अयांश के अंदर जल रही गुस्से की आग को नहीं बुझा सकी, ना ही उसके मन को ठंडक पहुंचा सकी। अयांश वहीं रेलिंग पकड़े खड़ा बारिश में भीगता रहा। आंखें आरवी को याद करते हुए उसने फिर भींच ली और सर्द और दर्द भरी आवाज में बोला, मैं पास आता हूं तो दम घुटता है तुम्हारा, कोई और पास रहता है तो मुस्कुराती हो, क्यों? विनीत अयांश को लेकर बहुत परेशान सा अपने कैबिन में इधर उधर चल रहा था। तभी वर्तिका उसके कैबिन में आ गई। विनीत ये देखना। वर्तिका को देख विनीत चलते चलते रुक गया, पर जैसे ही वर्तिका ने विनीत के परेशान चेहरे को देखा, वो अपने हाथ की फाइल टेबल पर छोड़कर विनीत के पास आई और उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोली, क्या हुआ वीनू? तभी विनीत की आंखों में नमी आ गई। वो दी कहकर वर्तिका से लिपट गया। विनीत की आंखों से आंसू बह निकले जिन्होंने वर्तिका का कंधा भिगो दिया। ये महसूस कर और विनीत को यूं देखकर वर्तिका घबरा गई। वो उसका सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ वीनू? विनीत वर्तिका के गले लगे लगे बोला, दी हमारा अयांश, अयांश ऐसा क्यों है दी? वो अपनी तकलीफ अपना दर्द क्यों शेयर नहीं करता, क्यों कुछ नहीं बताता? दी अयांश गुस्से में है, बहुत गुस्से में है आज, गुस्से में होता है ये अक्सर, पर आज वो दर्द में भी है दी। उसकी आवाज़ से पता चल रहा है दी वो कितनी तकलीफ में है, उसकी ज़ुबान से निकला एक एक लफ्ज़ उसके दर्द को बयां कर रहा है। क्या हुआ होगा दी आज अयांश के साथ? दी मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, ना उसके दर्द की वजह जान सकता हूँ, ना उसके दर्द को कम कर सकता हूँ। कैसा दोस्त हूँ दी मैं जो अयांश के दर्द में उसके साथ रहने के भी काबिल नहीं हूँ, मैं कैसा दोस्त हूँ? कहकर विनीत ने रोते रोते वर्तिका को अयांश की हालत के बारे में बताया। क्रमशः